ఓం శాంతి. సబ్సే పహలే మే ఆప్ సబ్కో నయే సాల్ కి బహుత్ బహుత్ బధాయి దేతా హూం, ముబారక్ హో. నయే వర్ష్ మే ఔర్ వో భీ అవ్యక్త్ మాస్ మే బాబా కే ఇస్ చరిత్ర భూమి మే, తపస్యా భూమి మే, इस बाबा की कर्म भूमि में आप सबको ये बहुत सुंदर गोल्डन चांस मिला. भले आपके हिसाब से थोड़ी ठंडी ज्यादा है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ आप सभी बहुत अच्छा योगी जीवन का अनुभव कर रहे होंगे. ये बाबा की तपस्या भूमि अपने आप कण कण से बाबा की याद दिलाती है. किसी भी स्थान पर चले जाओ, बाबा यहाँ खेलते थे, बाबा यहाँ बैठते थे, बाबा यहाँ बच्चों से मिलते थे, बाबा यहाँ योग करते थे. तो जरूर मधुबन की इस पावन भूमि में आप सब ने दो तीन दिन में बड़े अच्छे अच्छे अनुभव किए होंगे. कर रहे हैं ना सभी? अच्छा लग रहा है ना? जो यहाँ पहली बार रहे हैं वो हाथ उठाओ. पहली बार इतने सब? ये तो आधे से ज्यादा है. अच्छा, उनको ही लेके आए. उनको ही लेके आए. अच्छा, इसलिए सब वही हैं, लगभग वही हैं. तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी तो नीचे आते हैं बेहद में, और आ करके मिलन मना के वहां से ही वापस चले जाते हैं. आते हैं तो यहाँ चार धाम के दर्शन करके जाते हैं. तो बहुत अच्छा ये चांस आप सब ने लिया है. अमृत वेले से रात तक सभी अव्यक्त मौन की स्थिति का भी अच्छा अनुभव कर रहे हैं. बाबा कैसे कर्मयोगी बनकर रहे, मैं समझता हूँ ये भी बातें हमारी बहनों ने सुनाई होंगी. बाबा की वो लास्ट कर्मातीत स्टेज, जिसमें एक साल तक विशेष बाबा ने संपूर्ण कर्मयोगी बनकर के कर्मातीत स्थिति को आवाहन किया और कर्मातीत बन गए. 68 में विशेष बाबा का जो गहरा पुरुषार्थ चला है, वो बाबा की साकार मुरलियों से भी पता चलता है. कर्म नहीं छोड़ा बाबा ने, कोई भी कर्म इतनी बड़ी एज में भी. बाबा ने कई भवन बनवाए. उस समय ये ट्रेनिंग सेंटर बन रहा था, जो ट्रेनिंग सेंटर शांति स्तंभ के सामने है, ऊपर का फ्लोर बन रहा था. इंद्रप्रस्थ बनने की तैयारी हो रही थी. बाबा की बहुत अच्छी अच्छी प्लानिंग थी. सब कार्य करते, जो भी बच्चे आते उनको हर प्रकार से रिफ्रेश करते. जितने भी बच्चों के पत्र आते, बाबा उन पत्रों का खुद जवाब देते. हर कार्य करते हुए कर्मयोगी स्थिति क्या होती है, बाबा ने उस समय सब बच्चों को यह अनुभव भी कराया. क्योंकि कर्मयोगी आत्माएं कर्म नहीं छोड़ती, लेकिन कर्म के बंधन में नहीं बंधती. तो बाबा ने साकार में वो स्थिति बना करके दिखाई. उपराम, अव्यक्त, अलौकिक, न्यारे प्यारे बन करके बच्चों से मिलन भी मनाया, लेकिन बच्चों को कहीं भी बाह्य मुक्ता में आने नहीं दिया. आप सब ने शायद सुना होगा, रोज सवेरे मुरली के पहले बाबा के पास बच्चे आ जाते थे, दादियां खास करके, और और बाबा को कहती थी बाबा गुड मॉर्निंग। तो लास्ट में बाबा ने ये भी कहा, बच्चे आवाज में क्यों आते हो? ब्रह्मा बाबा आपकी अलौकिक माँ आप बच्चों के लिए ब्रह्मा भोजन बना रही है, अंदर अंदर मंथन कर रही है, चिंतन कर रही है, आप आकर के बाबा को क्यों बोलते हो आवाज में गुड मॉर्निंग? बोलने की जरूरत नहीं है। बाबा ने आवाज की दुनिया को जैसे छोड़ दिया, किनारा कर लिया, कर्म नहीं छोड़ा लेकिन आवाज की दुनिया से एकदम उपराम होते गए। बाबा की सृष्टि हाल में बाबा के सामने वही हाल था, छोटा हाल। बाबा वहां पर योग कराने के लिए योग करने जाते थे तो वहां एक घड़ी थी, उसमें एक चिड़िया थी, वो बीच बीच में आके घंटा बजाती थी चूं चूं। तो बाबा जब योग करते या कराते कहते बच्ची इस बच्ची को शांत कर दो, चुप करो। इतना बाबा ने एकाग्रता का अभ्यास किया, तपस्या ऐसी की, दादियां सुनाती हैं ये जो ऑफिस बने हैं यहां पर पहाड़ी थी। एक दिन मैं इस जो शशि बहन की ऑफिस के आगे थल्ला है वहां बैठा था, पांच छह भाई बैठे थे और हमारी दादी वहां प्रकाशमय दादी चक्कर लगाती थी, पैदल करते थे। तो एक दिन पैदल करते करते हमारे पास रुक गई, चार पांच भाई हम बैठे थे। कहती है तुम लोग यहीं पर आके क्यों बैठते हो, अच्छा लगता है यहां बैठना? हाँ दादी बहुत अच्छा लगता है। कहती तुमको पता है ये कौन सा स्थान है? हमने कहा नहीं मालूम है। तो दादी कहती है कि यहां पर पहाड़ी थी, समतल ऐसी पहाड़ी थी और बाबा सवेरे सवेरे 3:30-4 बजे आकर के इस पहाड़ी पर खड़े हो जाते थे लाइट हाउस बन करके, और हम सब बाबा को घेर लेते थे आकर के, सब जितने भी भाई बहन थे सब बाबा के चारों ओर खड़े हो जाते थे। बाबा कंटिन्यू लगातार कभी आधा घंटा कभी पौना घंटा खड़े खड़े योग की दृष्टि देते थे, पावर हाउस से जैसे पावर आती थी। तो यहां पर बाबा ने तपस्या की है इसलिए आप लोगों को ये स्थान खींचता है। तो इस स्थान पर तो ब्रह्मा ने स्वयं तपस्या की है इसलिए इस स्थान की बहुत बड़ी विशेषताएं हैं। बाबा यहीं रह करके कर्मातीत बने हैं। लास्ट दिनों में जब बाबा को अव्यक्त होना था, जो आज की मुरली में बाबा का कदम था, कदम सुनाया ना, सुनाते हैं ना कदम, ब्रह्मा बाबा का 7वां कदम। उस 7वें कदम में विशेष अंडरलाइन था कि स्वप्न और संकल्प से भी लगाव मुक्त। ब्रह्मा बाबा का वो पुरुषार्थ रहा कि स्वप्न में भी कहीं देह में, संबंधों में, किसी वस्तु में, किसी भी चीज में, स्वप्न में भी लगाव नहीं रहा एकदम। जैसे बाबा एक बहुत सुंदर मिसाल देते हैं, जैसे मक्खन से बाल ऐसे निकाल लिया जाए, तो ऐसे आत्मा निकली जो कोई खिंचाव नहीं हुआ, न शरीर ने खींचा, न बच्चों ने खींचा, न इतने बड़े यज्ञ के कारोबार ने खींचा। स्नेह तो बहुत था बाबा का, दिल में बाबा के बच्चे रहते थे, बहुत प्यार बाबा करते थे, लेकिन लगाव मुक्त हो गए। कहीं भी किसी भी आत्मा को याद नहीं करना, एक बाबा दूसरा न कोई। लास्ट में जब बाबा ने शरीर छोड़ा है तो दादी ही सर्प सामने थी, दादी के हाथ में हाथ देते दृष्टि देते चले गए। 8:30-9 तक मुरली सुनाई है, मुरली सुना करके विदाई लेके अच्छा बच्चे छुट्टी। ये छुट्टी शब्द किसी के ध्यान पर नहीं आया, अभी हम लोग कैसेट में सुनते हैं, छुट्टी शब्द गेट पर आकर के बाबा ने कहा। और ऐसे छुट्टी लेके हाथ हिला करके क्लास से सब बच्चों से मिल करके कमरे में आके अव्यक्त हो गए। वो कर्मातीत स्टेज जिसमें बाबा ने जब फिर प्रवेश किया 21 तारीख के बाद, जब बाबा का पार्ट अव्यक्त बाबा का चला, तो बाबा ने अपने उस अंतिम स्वरूप और अपनी अंतिम स्थिति का वर्णन किया है। ब्रह्मा बाबा को एक दिन शिव बाबा ने कहा कि तुमको बहुत बच्चे याद करते हैं, जाओ बच्चों से मिल के आओ। शायद 23 जनवरी को, 21 को कायदे से अव्यक्त बाबा का अवतरण हुआ है गुजरात दादी के तन में, और फिर 2-3 दिन के बाद ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के बिना बच्चों के बीच में आए। लेकिन बाबा ने बताया कि शिव बाबा ने कहा है कि तुम ज्यादा समय वहां नहीं रहना, थोड़े समय के लिए जाओ और वापस आ जाओ। तो जब बाबा आए हैं तो कर्म भोग पर कर्म योग की विजय कैसे हुई वो बाबा ने सारा अनुभव सुनाया है। कर्म भोग तो था क्योंकि ठंडी बहुत थी, बाबा को खांसी भी थी, हार्ट की भी थोड़ी उस समय तकलीफ, पता तो नहीं था हार्ट की कोई बीमारी है, लेकिन जब जाना होता है तो 2-3 दिन पहले ना एक मुरली चली नाइट क्लास में, जिसमें बाबा ने कहा, 15 जून की मुरली है 68 की, जिसमें बाबा ने कहा बच्चे सबसे अच्छी मौत है हार्ट फेल हो जाना। जैसे सब तैयारी थी बाबा की कैसे जाएंगे क्या करेंगे, तो सब बाबा सुनाता रहा है। तो लास्ट दिन में सवेरे बाबा को थोड़ी तकलीफ थी महसूस हुआ दादी को, तो बाबा के पास दादी आई, क्योंकि दादी को बाबा ने रोका था, दीदी को भेज दिया यहां से, क्योंकि दीदी की थोड़ी ज्यादा बाबा से बहुत गहरी, क्योंकि बहुत समीप संबंध रहा, तो बाबा ने दीदी जी को तो भेज दिया सेवा पर, और दादी जी आई थी पार्टी लेकर के। दादी प्रकाशमणि को कहा तुम पार्टी भेज दो, तुम रुक जाओ। पार्टी वापस चली गई, 17 को वापस गई है, और 18 को सवेरे सवेरे दादी जी ने देखा कि बाबा को बहुत खांसी और बहुत ठंडी थी, तो दादी ने कहा बाबा आज आप मुरली नहीं सुनाएंगे, मुरली की जगह मुरली सुनाने मैं जाती हूँ, आप यहीं बैठो योग करो, यहीं रहो कमरे में। तो बाबा को जाने नहीं दिया और खुद जा करके मुरली सुना करके आई। लेकिन बाबा तो जानता तो सब था कि आज का ये लास्ट दिन है। आते ही दादी को बोलता बाबा को कोई तकलीफ नहीं है, चलो चलो जितने बच्चों के पत्र आए हैं वो पत्रों का जवाब देना है। और बाबा उठ करके ईशु दादी के ऑफिस है ना, देखना आप सब पहली बार जो आए हैं, उस ऑफिस में बाबा बैठे दादी बैठी, ईशु दादी से पत्र पूछे, 40-45 पत्र थे, मतलब पढ़ो सब, सब सुनता गया बाबा और सबका जवाब दिया। हम समझ सकते हो कर्म भोग तो था लेकिन कर्म भोग की भासना नहीं थी, दर्द था लेकिन उस दर्द को समाया हुआ था। और वो कर्मयोगी जीवन क्या होगी, आप समझ सकते हो कि कर्म कर रहे हैं लेकिन कर्म बंधन नहीं बन रहा, जवाब दे देना सबको, कोई ये न कहे बाबा ने मेरे पत्र का जवाब नहीं दिया। लास्ट पत्रों का जवाब दिया, जवाब देने के बाद कहता बच्ची तुमको पता है कहाँ कहाँ क्या क्या बन रहा है। दादी को क्या पता, दादी तो बॉम्बे में रहती थी, चलो बच्ची आज दिखाते हैं ट्रांसफर कैसे किया आपने वो। तो बाबा दादी की अंगुली पकड़ करके शांति स्तंभ जहां बनाए वहां खेल का मैदान था, बाबा वहां खेलते थे, टेनिस खेलते थे उधर, और वो सब दिखा के ये यहाँ ट्रेनिंग सेंटर, ये बनाने वाले मिस्त्रियों का परिचय कराया, जो भी काम थे करने वाले उन सब का परिचय दादी को कराया, सबको टोली खिलवाई दादी से कि सबको मिलो सबसे बात करो, और सारा दिखा के घुमा करके फिर भंडारे में एक एक चीज सबसे परिचय कराया, भंडारे में कहाँ क्या रखा है कैसे है, फिर आगे का प्लानिंग क्या है क्या क्या करना है। दादी को एक 1.5 घंटा बाबा ने पूरा पांडव भवन घुमा दिया, और बाद में आके रेस्ट किया और शाम को कहता बच्चे आज जल्दी बच्चों को बुला लो, सवेरे बाबा ने मुरली नहीं सुनाई तो बच्चों को संकल्प चलते होंगे बाबा शायद बीमार हैं, तबीयत ठीक नहीं है, आज जल्दी क्लास करो। रोज क्लास 9 बजे होता था, उस दिन 8 बजे ही करवा दिया। जब बच्चे आए बाबा गए, इतनी अच्छी मुरली चलाई, उसमें जरा भी भासना नहीं आएगी कि बाबा अभी ये लास्ट मुरली सुना रहा है, विदाई लेगा। लेकिन बाबा ने कहा बच्चे देह मान बहुत कड़ा है, इस देह मान को जीतने में बहुत मेहनत लगती है, अंत तक ये नहीं छूटता है, कर्मातीत बनना तो बहुत मेहनत का काम है। लेकिन बच्चों को कोई निंदा करे तो निंदा स्तुति में समान रहना, निंदक हमारा मित्र होता है। बहुत अच्छी अच्छी मुरली चला के शिक्षाएं दी हैं और लास्ट में विदाई लेकर के कमरे में आके बाबा व्यक्त हो गए दादी को हाथ में हाथ दे करके। तो कर्मयोगी स्थिति क्या होती है बाबा ने सबको करके सिखाया। कभी भी वैसे भी कहते हैं कर्म संन्यास नहीं होता। कोई कहे मैं कर्म छोड़ करके योग करूं, कर्म करके मैं ये करूं, कोई भी ऐसे जैसे जंगल में जाने वाले सन्यासी कहते हैं हम तो कर्म सन्यासी हैं, और बाबा कहते हैं कर्म सन्यास होता ही नहीं है। तुम अगर भोजन खा रहे हो, चल फिर रहे हो, बात कर रहे हो, तो ये बोलना, ये सांस लेना, संकल्प चलाना, भोजन करना, स्नान करना, ये सब कर्म तो है ना, इसके बिना कैसे रह सकते हो। तो ये कर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र पर कर्म के बिना आत्मा नहीं रहती। लेकिन उस कर्म में बाबा की याद समाई हुई हो, कई बार बाबा के शब्द सुने होंगे, हाथ कार दे दिल यार दे, हाथों से काम करते रहो और दिल से बाबा को याद करते रहो, और जो कर्म पूरा हो गया बाबा आपने करा लिया, शुक्रिया बाबा आपका। करण करावन हार बाबा अपने किसी भी बच्चे से कोई भी अच्छे से अच्छा कार्य करा लेता है, सिर्फ बच्चा आज्ञाकारी चाहिए बस। मैं तो यही अनुभव करता हूं कि संगम युग पर प्रभु लीला चल रही है, और इस प्रभु लीला में जो सामने आए, सपूत बने, आज्ञाकारी बने, हाँ जी किया, बाबा के इस विश्व परिवर्तन के कार्य में वो निमित्त बन गए। उनको बाबा ने बहुत बड़ी जवाबदारी दी, तख्त दे दिया। आज उसमें बाबा ने कहा है लगाओ मुक्त जो थे वो त्रिमूर्ति तख्त नसीन होकर के रहे। त्रिमूर्ति तख्त सबसे अच्छा तख्त कौन सा है? पहले तो आत्मा का अकाल तख्त है, पहला तख्त तो ये है। प्रैक्टिस करते होंगे मैं आत्मा इस अकाल तख्त पर विराजमान हूँ, इस शरीर का आधार लेकर के कर्म कर रही हूँ, कर्म पूरा हुआ फिर अपने तख्त पर बैठते ही एक लाइट का आभा मंडल बन जाता पवित्रता के आधार से। 3-4 दिन पहले एक वरदान था, जितनी आत्मा शुद्ध पवित्र बनती जाती है उसके चारों ओर एक फरिश्ते की ड्रेस तैयार हो जाती है। फरिश्ता कोई अलग नहीं है, हमारी पवित्रता की स्टेज जब सोल कॉन्शियस स्टेज बनती है, आत्मिक स्थिति में हम रहने का अच्छा अभ्यास करते हैं, तो एक बहुत सुंदर आभा मंडल तैयार हो जाता है पवित्रता का। और उस पवित्रता के आभा मंडल में आत्मा जब प्रवेश कर जाती है, अनुभव करती है कि मैं एक लाइट के शरीर में हूं, तो वही फरिश्ता ड्रेस है। वो फरिश्ता ड्रेस संगम युग का लक्ष्य है। ये कंबाइंड स्वरूप कर्मयोगी आत्माओं को बार बार अनुभव करना है कि मैंने कर्म किया, शरीर का आधार लिया, इसमें प्रवेश किया, कर्म पूरा हुआ, अपने लाइट की ड्रेस में चले गए। लाइट की ड्रेस में जाना माना इसने शरीर से निकल जाना। शरीर से निकल के आत्मा तो एक मिनट भी जली जाएगी तो शरीर क्या हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। आत्मा तो इस शरीर से कभी भी निकलती नहीं है, जब अंत आता तभी इससे निकल के दूसरे शरीर में जाती है, और जाती है तो भी साकार सृष्टि पर बिना शरीर के नहीं जाती और आती, उसको भी शरीर चाहिए, सूक्ष्म शरीर चाहिए, लाइट का शरीर चाहिए। अभी मैं कल हैदराबाद में था तो एक बड़ी अच्छी बात एक भाई ने सुनाई मुझे, वहाँ जो कैमरे बड़े पावरफुल लगाए हैं, जो नया भवन बना है जिसके अंदर भट्टी के कारण मैं गया था, कहता भाई साहब एक बात बताऊं, यहां पर इतने पावरफुल कैमरे लगाए हैं, एक दिन उन कैमरे के अंदर कई सफेद सफेद ड्रेस पर पूरा हाल भर गया करके, बिल्कुल एकदम व्हाइट, न चेहरा दिखाई दे न ये शरीर दिखाई दे, एकदम व्हाइट व्हाइट छाया दिखाई दे और कैमरे में आ गई सारी। तो कहता है इतने पावरफुल कैमरे हैं जो यहां पर, मैं तो डर गया ये तो भूत लगते हैं, कोई ऐसे तो नहीं है, क्या हो गया कौन आ गए, सफेद सफेद एकदम पूरा हाल, कि कोई व्यक्ति नहीं था, एक भी व्यक्ति नहीं था, बाबा के बच्चे अंदर नहीं थे, लेकिन वो कैमरा लगा था और उसने उस पर देख लिया कि पूरा हाल एकदम भर गया करके। कहता मैं एक बार तो डर गया, ये तो सारे भूत तो नहीं आ गए यहां, क्योंकि फरिश्ते की याद आए तो बहुत बड़ी बात है ना। कहता है फिर थोड़ी देर के बाद बाबा को कहा, बाबा ये सब क्या है? तो बाबा कहता बच्चे इनको प्यार से कहो कि अभी आपका टाइम पूरा हो गया, अभी बच्चे आने वाले हैं, आप अभी छुट्टी करो यहां से। तो कहता मैं बैठ गया योग में, बाबा को बोलता रहा, बाबा इनको आप छुट्टी दे दो, आप इनको भेज दो अभी यहां से। थोड़ी देर के बाद वो धीरे धीरे उठ गए, वो भी सब कैमरे आया कैमरे में, धीरे धीरे उठ के चले गए, हाल खाली हो गया। ये जो कोई सुख देने वाली आत्माएं होती हैं, कोई शांति की अनुभूति करने वाली आत्माएं होती है, शरीर तो बहुतों ने छोड़ा है और सबको तो शरीर मिला नहीं है, कोई कोई हैं जो अचानक चली जाती हैं, बड़ी अच्छी आत्माएं, लेकिन जब तक उनका गर्भ तैयार हो, जब तक उनको कोई नया स्थान मिले, तब तक तो वायुमंडल में रहती है ना, लेकिन वो भी बिना शरीर के नहीं रहती। कहने का मेरा भाव ये है कि बिना शरीर के आत्मा नहीं रहती इस सृष्टि पर, पांच तत्वों के दुनिया में, चाहे ये मिट्टी के शरीर है चाहे वो लाइट का शरीर है, और लाइट का शरीर प्योर शुद्ध उनका है जिनके विचार बड़े शुद्ध हैं, पवित्र है, और अगर विचारों में नेगेटिविटी है, ईर्ष्या द्वेष घृणा इधर की उधर की बहुत सारी व्यर्थ बातें हैं, तो उनका वो जो ड्रेस है वो काली हो जाती, छाया काली मिलती है, वो फिर दिखाई देती है तो लोग भयभीत होते हैं, डर जाते हैं। बाबा कहता बच्चे अपनी उस छाया को अगर बहुत शुद्ध पवित्र बनाना है, जब शरीर छोड़ेंगे तो उस छाया से दूसरी जगह जाएंगे, लेकिन चलते फिरते उस छाया में, पवित्र छाया में, फरिश्ते की ड्रेस में रहने की आदत डालो। वो फरिश्ते की ड्रेस लोगों को बड़ा सुख देगी, बड़ा आनंद देगी। आप लोगों ने हमारी दादियों को देखा है, कई पुराने जो जानते हैं, जब इस स्थान पर यहां बैठ जाती बाहर निकल करके, कई बार मैंने देखा पर दादी हमारी निर्मल संता दादी, उनका जो उरा था आभा मंडल था, दादियों का अपना अपना आभा मंडल रहा, लेकिन यहां पर वो बैठ जाई गई अगर कुर्सी पर आके, तो चारों तरफ से कहां कहां से लोग आकर के उनको घेर लेते थे, और इतने अच्छे वाइब्रेशन आत्मा महसूस करते थे, बोलती नहीं थी ज्यादा, ऐसे ऐसे दृष्टि देते, कोई बुलवाओ छोटा मोटा थोड़ी बुरी बात बोल दिया नहीं, बस मुस्कुराना और दृष्टि देना। वो जो आभा मंडल उनका, वो जो पवित्रता का ओरा था, वो ओरा जो है वही छाया का प्रकाश का शरीर है, और कर्म करते हुए अगर हम कर्म किया और उस छाया में चले गए, कर्म योगी स्टेज यही है, कर्म किया कर्म से अलग हुए अपने परिस्थित ड्रेस में चले गए, बाबा की याद है, बाबा साथ है, बाबा की याद में कोई कर्म कर रहे हैं वो तो कर्म योग है ही, लेकिन निरंतर ये योग कंबाइंड स्वरूप, ब्राह्मण सो फरिश्ता हूं, ब्राह्मण सो फरिश्ता हूं, हमारे चार कंबाइंड स्वरूप हैं, एक आत्मा इस शरीर के साथ कंबाइंड है, अलग नहीं हो सकती, और बार बार हम अभ्यास करते हैं कि मैं आत्मा इस शरीर से अलग एक विदेही निराकार ज्योति स्वरूप हूं। ये अभ्यास कर्मातीत बनने के लिए बहुत जरूरी है, मैं अलग हूं, इस शरीर अलग है, बैठ जाओ भ्रकुटी में, भान आए कि मैं अलग हूं, ये अलग है, मैंने ये वस्त्र पहना हुआ है, मैं देह नहीं हूं, मैं तो एक चैतन्य शक्ति हूं कंबाइंड, अलग नहीं हूं लेकिन इसके अंदर रहते हुए एक अलग शक्ति हूं। अगर मैं इसे अलग हो जाऊंगी तो यह शरीर मिट्टी हो जाएगा। देह और देही का अलग अलग अनुभव होना योग की यही यथार्थ विधि है, और इसी विधि से आत्मा कर्मातीत स्टेज को पाती है। जिसने इस अभ्यास को कर लिया, शरीर का आधार लेकर के कर्म किया, शरीर के आधार छोड़ा, अपने भ्रकुटी आसन पर अकाल तख्त पर बैठे, फरिश्ते ड्रेस मिली और फरिश्ते ड्रेस से, बाबा कहता अगर मिट्टी की ड्रेस देखने की अगर आदत भी है, कई बार कहते ना शरीर देखने की आदत है तो तुम लाइट के शरीर को देखो, जब लाइट के शरीर में खुद रहोगे तब तो दूसरे के लाइट के शरीर को देख सकोगे। खुद ही मिट्टी की ड्रेस में बैठे हैं देह मान में, ये बड़ा सुंदर है, ये बड़ा ना ऐसा है, फलाने की नाक ऐसी, कान ऐसे, उसका चेहरा ऐसा, तो अगर वो देहमान वाला चिंतन है तो फरिश्ता ड्रेस कैसे बनी, कर्मातीत कैसे बनेंगे। तो कर्मातीत स्टेज कोई अलग नहीं है, बाद में जब आत्मा संपन्न संपूर्ण बन जाती है तब वो शरीर छोड़ के फरिश्ता ड्रेस संपूर्ण ड्रेस में चली जाती है, जैसे ब्रह्मा बाबा गए। लेकिन बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चे इस क्षेत्र में कर्म के अंदर रहते हुए कर्मयोगी बन करके कर्मातीत स्थिति का अनुभव करें। हमारी दादी जानकी जी बहुत ही बात हम लोगों को कहते थे, अरे कर्मातीत स्थिति का अनुभव किए बिना कैसे हम जाएंगे, क्या हम कर्मातीत बनते ही शरीर छोड़ देंगे? नहीं, मैं तो शरीर में रह के कर्मातीत बन के देखूं, मेरा तो लक्ष्य ये रहता है। जानकी दादी जी का ये अनुभव रहा कि शरीर में होते मैं कर्मातीत हूं, कोई कर्म बंधन मुझे अपनी तरफ खींच नहीं सकता। कर्म से अतीत नहीं, कर्मातीत कोई समझ रहा कर्म से अतीत हो गया, कर्म से न्यारा हो गया, नहीं, कर्म करते हुए कर्म बंधन से अतीत। कोई भी कर्म बड़े अच्छे से अच्छा कर्म हो, कई लोग श्रेष्ठ कर्म के बंधन में बंधते जाते, सेवाओं के बंधन में बंध गए, बाबा कहता लोहे की जंजीर तो छोड़ के आए, सोने की जंजीर में फंस गए आके, मेरी सेवा, मेरा स्थान, मेरा मेरे मेरे के फेरे में आ गए, सोने की जंजीर है। श्रेष्ठ कर्म भी बंधन मान देता है, उसके बिना भी कोई रह ही नहीं सकते। आज कई बार ऐसा हुआ लॉकडाउन के अंदर, कईयों ने तो बहुत अच्छी स्थिति बनाई, समय मिला, एकांतवास किया, अच्छी स्टडी किया, सारी मूल्यां पढ़ डाली, सारी क्लासेस सुनी, खूब गहरे गहरे अनुभव कर लिए। अब जिनको ये अभ्यास नहीं था वो तो एकदम तनाव में आ गए, कहां तक घर में बैठे रहेंगे, एकदम टेंशन पैदा हो गया, बोर हो गए, जैसे चिड़चिड़े हो गए। बाबा हम बच्चों को कहता है, बच्चे ठीक है कर्म क्षेत्र पर सेवा की फील्ड है कर लो, नहीं है कोई हर्जा नहीं। मुझे तो खैर बाबा ने साइंस के साधनों में बहुत बिजी कर दिया, मैंने कभी नहीं सोचा था, जितनी क्लासेज मैंने शायद 45 साल में नहीं कराई होंगी वो 8 महीने में करा लिया, इतनी सारी रोज चार, तीन चार, तीन चार, अभी भी आज के दिन 3 है, कल ही मैं आया हूं, कल भी 3 बुक हैं, परसों से अलग बुकिंग है, पूरे जनवरी मास में भाई साहब एक क्लास करा दो, ऑनलाइन करा दो, ऑनलाइन करा दो, ठीक है बहन जी, हाँ नोट करा दो, नोट करा दो, ठीक है बिजी हैं, नया नया चिंतन चलता है, विचार सागर मंथन चलता है अपने आप में, बाबा के व्यर्थ से मुक्त होने की बड़ी अच्छी विधि है, इधर उधर के व्यर्थ जाते नहीं, कहाँ क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, मुझे कुछ पता ही नहीं है। एक तरफ बाबा की मुरली तैयार करनी, एडवांस में सबको देना है, सबको ये नहीं लगे कि भाई मुरली छप नहीं रही है, मेरे पास नहीं पहुंची, मेरी भाषा में ट्रांसलेशन नहीं हुई, पत्र पुष्प भी जाए, मुरली भी जाए, सबको हमारी तरफ से कोई कमी नहीं पड़े। बाकी जिनके पास कोई साधन नहीं है उनको नहीं मिलती तो मैं क्या करूं, कोई कोई गांव में अभी तक भी इंटरनेट या प्रिंटिंग की या कोई भी फोटोकॉपी करके नहीं देता है, पुराने बेचारे पढ़ रहे हैं, अभी मैं गांव में गया तो हमने कहा तुम मुरली पढ़ते हो, कहते पढ़ते हैं लेकिन नई नहीं मिलती, ताजी नहीं मिलती, बहुत एकदम दूर गांव है सेंटर से, सेंटर वालों के अंदर इतनी लगन होनी चाहिए कि बाबा की मुरली मैं छाप करके इनको दूं, फोटो कॉपी करके दूं। और उनके पास ये आजकल के मोबाइल भी नहीं है गांव में, तो कईयों को नहीं मिलती है। लेकिन हमारा एक लक्ष्य रहता है कि कोई भी बाबा का बच्चा किसी भी कोने में बैठा है ये न कहे मुरली लेट हो गई, मुझे टाइम पर नहीं मिली, मेरी मार्च की मुरलियां अभी तैयार हैं, जनवरी में हम बैठे हैं, हमें 3 महीने पहले होमवर्क करना है, तैयार करना है, पत्र पुष्प तैयार है, जनवरी का हो गया, फरवरी का तैयार है। थोड़ी मेहनत है, करना पड़ता है, लेकिन अगर हम सब बातों से इधर उधर की जितनी व्यर्थ बातें हैं वो हमारे समय को बर्बाद करती हैं। बहुत समय है, कोई कहता मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं है, बाबा कहता ये बहानेबाजी है, समय बहुत है लेकिन इधर उधर की बातों में, देखने सुनने में, व्यर्थ चिंतन पर चिंतन में आपका समय जा रहा है, उस समय को बचा लो, आपके पास समय ही समय है। तो कभी ये नहीं लगता है कि मैं बहुत बिजी हूं, मेरे पास बहुत काम है, मैं क्या करूं, आने दो सब कर लेंगे, बाबा कराएगा, जब तक शक्ति है करते चलो, हटना नहीं है, सब करो मिलजुल करके, करो सब कार्य स्मूथ चलते, कभी टेंशन का मैंने तो आज तक अनुभव नहीं किया, मुझे टेंशन हो गया, ये काम रह गया। काम टेंशन उनको होता है ना जो पेंडिंग करते हैं, पेंडिंग अगर हमारा होगा, हम 4 दिन 6 दिन कहीं बाहर चले जाएं तो नेचुरल है कंप्लेन आना शुरू हो जाएंगी, अभी तक नहीं मिला। और एक दिन मैं पेंडिंग कर दूं तो 10-15 लोग तो यहीं खड़े हो जाएंगे, छापने वाले, भेजने वाले, करेक्शन कई पीछे होते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि कर्म करो लेकिन कर्म का बोझ नहीं होना चाहिए, एक तरफ बंधन है एक तरफ बोझ है। आज बाबा ने क्या वरदान में कहा, जिम्मेवारियां लो, निमित्त आत्माएं जिम्मेवारियां लेते हैं तो उन्हें दुआएं मिलती हैं और दुआएं उस जिम्मेवारी का बोझ अनुभव होने नहीं देती, वो लाइट हो जाता, हल्का हो जाता है। ऐसे नहीं मेरे पास ये जिम्मेवारी है, ये जवाबदारी है, ये करना है। बाबा कहता अरे बच्चे, जिम्मेवारी छोड़ करके थोड़ी आपको योग करना बैठ करके, सब जिम्मेवारियां लेते चलो लेकिन जिम्मेवारियां आपको बोझ अनुभव न हो, उसके लिए जिम्मेवारी जो मिली है उससे आत्मा को खुश करने का, संतुष्ट करने का प्रयास करो। अगर संतुष्ट हो जाएगी सामने वाली आत्मा तो दुआएं देगी और वो दुआएं आपके बोझ को खत्म कर देंगी, हल्का बना देंगी। कर्मयोगी जीवन में हल्कापन बहुत मदद करता है। मैं हमेशा कहता हूं कोई को कर्मयोगी बनना है ना तो भारी नहीं होकर के कर्म करना, ये आ गया, ये करना, तनाव में आ जाते हैं लोग, फटाफट सोचने क्या करूं। जैसे कोई क्या आगे पेपर आता है ना, स्टूडेंट लाइफ में पेपर देने वाले जानते हैं, पढ़ते ही सोच ले अरे ये किसने निकाला पेपर, ये कहां से निकल गया है, तो पढ़ाया ही नहीं गया, टेंशन में आ जाए तो क्या होगा, फेल हो जाएगा। अगर वही सरलता से सहन देख करके धीरे से पढ़ लेता है, चलो ठीक है पेपर आ गया, पेपर है, पास होना है मुझे, जो मुझे सहज आता है पहले मैं उसका तो उत्तर दे दूं, फिर धीरे धीरे जब शांति से एक का उत्तर देता, फिर दूसरे की टचिंग आती, फिर तीसरे की आती, वो पास हो जाता है। और जिसके पास आ गया, कैसे निकाला, कहां से निकाला, ये पढ़ाया नहीं गया, ये तो फालतू पेपर आ गया, बस वो तो गया, कोई उत्तर नहीं दे पाता। ऐसे ही हमारे इस ब्राह्मण जीवन में छोटी सी बात आती, कहां से पेपर आ गया, मैंने तो कोई गलती की ही नहीं थी, मैंने तो कोई भूल नहीं की, ये कैसे हो गया, बस योग नहीं लग रहा है, भारीपन आ गया, चिंतन चलने लगा, पेपर ने परास्त कर हरा दिया। इसलिए पेपर को पेपर नहीं समझो, क्लास आगे बढ़ने का साधन समझो। पेपर तो हरेक के आगे आए, किसके आगे नहीं आए, चाहे शरीर का आया, चाहे साथियों का आया, संबंधों का आया, किसी के आगे, धन का भी आ गया, परिवार का आ गया, समाज का आ गया, सरकार का आ गया, प्रकृति का, पेपर तो दुनिया में भरे पड़े हैं। दादी जी मेरे पता क्या कहती थी, प्रकाश में दादी कहती थी, मैं तो समझती हूँ मैं हर समय पेपर हाल में बैठी हूँ, मैं तो पेपर हाल में ही रहती हूँ, इधर जाओ कोई कुछ बोल देता है, इधर जाओ कुछ कुछ बोल देता है, दादी के शब्द थे, मैं तो सदा पेपर हाल में हूँ। मैं पेपर में पास होकर के दिखाऊं, ये मेरी बात है। तो सब बाबा के बच्चों को ध्यान रखना है कि कर्म में ऐसे नहीं समझना ये बोझ है, बंधन है, कैसे करूं क्या करूं। बहुत सरलता के साथ जो नेचर को इजी बना लेते हैं ना, वो कार्य को इतना सहज करते हैं जैसे कोई खेल कर रहे हैं। बाबा चाहता है बच्चों के पास कितने भी काम आ जाए, लेकिन ऐसी स्थिति हो जैसे खेल खेल में हो रहा है, और खेल खेल करते तो भारी नहीं लगते, बोझ नहीं आता, ऐसा लगता वाह और आने दो और आने दो और आने दो। तो कितने भी कार्य आए, कार्य छोड़ करके योग नहीं करना। योग में बैठ गए और कार्य पड़ा हुआ है तो क्या होगा, बार बार बुद्धि उधर जाएगी, योग नहीं लगेगा। योग में है फिर भी बाबा कहता है चलो आपको सेवा याद नहीं आनी चाहिए, कट करो वहां को विचारों को, लेकिन छोड़ करके योग कर रहे हो तो कभी वो विचार कट होंगे नहीं, मेहनत लगेगी। इसलिए कोई भी कर्म है, मिल रहा है, कर्म करते हुए हल्के होकर के करो। हमें दादा विश्वरतन ने एक बड़ी अच्छी बात सुनाई थी, सिखाई थी प्रैक्टिकल में। जब अमृत वेले का समय होता था यहाँ मधुबन में, तो हम लोगों की ड्यूटी थी पानी गर्म करके हर एक के कमरे में पहुंचाने की। उधर योग चल रहा है और उधर हम लोग पानी गर्म करके सवेरे सवेरे सबके बहनों के कमरों में दो बाल्टी तीन बाल्टी गरम गरम पानी पहुंचाना सवेरे सवेरे। योग छूट जाता था हमारा। फिर उधर मुरली क्लास होता था तो हम लोग धोबी घाट पर चले जाते थे। तो कभी कभी संकल्प चलते थे कि हमारी मुरली भी मिस हो गई, योग भी मिस हो गया। मिस करने की मना करता है बाबा, नहीं करना चाहिए। तो दादा कहता था कुछ भी मिस नहीं होता, अगर तुम्हारी लगन है ना तो वो जब काम पूरा हो गया तो कर लो, लगन चाहिए। लगन है तो कोई भी कार्य छूटता नहीं है। कहता हम लोगों को बार बार दादियां कहती तुम पहरे पर बैठ जाओ, फंक्शन वहां चल रहा है उधर कार्य उधर हो रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकल था व्यक्ति। विश्वरतन दादा हमारा प्रैक्टिकल सब कुछ करके दिखाता था। रोटियां बनाना हो तो वो आगे है, पहरा देना हो तो आगे है, डॉक्टरी डॉक्टर को समय बना, सब बच्चों को सबको दवाई देता था, इंजेक्शन देता था, डॉक्टरी भी किया। फिर उसके बाद ये अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड बना दिया, वो भी सारा संभाला, सारी जवाबदारियां दादा के पास। पूरे यज्ञ की जितनी कारोबार जो आता था दादा बोला सीधा हाँ जी के सिवाय उसने कभी कुछ कहा ही नहीं। दादियों ने कहा हाँ जी हाँ जी, लास्ट तक भी दादा ने साइन जो किए हैं, लास्ट दिन भी चेक पर साइन उनके हुए, वो भी कोई ये नहीं कह सकता इनका हाथ हिल गया। पूरा विश्व रतन ऐसे नहीं ऐसे ऐसे मार दिया चिड़िया, बिल्कुल फर्स्ट क्लास साइन। काम एक्यूरेट होना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट, भले टाइम थोड़ा लगे लेकिन एक्यूरेट होना चाहिए। करके सिखाता था। हम लोगों रोटी जब बनाने जाते थे ना, प्रभा बहन को याद होगा, रोटी बनाने जब जाते थे तो बड़े तवा था इतना बड़ा, और 8-10 रोटियां उस पर डाल दिया, और सिगरी पर फिर डालनी है रोटी, क्योंकि तवे पर एक तरफ पका के दूसरी तरफ सिगरी पर फुलाने के लिए डालते थे। तो कभी कभी जल्दी जल्दी ऐसे फेंक, जल्दी फेंकेंगे तो या तो कोई जल जाएगी या तो कच्ची रह जाएगी। कच्ची या जली हुई रोटी को लेके उठा के लाता था, कहता इधर आओ तुमने बनाई है, अच्छा ये कच्ची रोटी अगर कोई खा लेगा यज्ञ की समझ करके और पेट में दर्द होगा तो किसको बोझ चढ़ेगा, सीधा सिखाता था। और मान लो उसने नहीं खाई फेंक दिया तो किस पर बोझ चढ़ेगा, यज्ञ का नुकसान किया उसने। मतलब कहने का भाव ये है कि एक्यूरेट कार्य कर्म करो, लेकिन ऊपर ऊपर से दिखावा नहीं करो। काम उतारने के लिए काम नहीं करो, कहीं उतारने के लिए करते हैं ये काम है ना, उतार दो बस, मेरे को ही कहा जाता है, मेरे पर ही है सब कुछ, फटफट फटफट करके उतार दिया, फिर नुकसान हो या फायदा हो। लेकिन कर्म योगी वो है जिसके कर्म बिल्कुल एक्यूरेट हो, जरा भी कर्म में डिफेक्ट नहीं निकालना चाहिए कोई। योगी वो है जो युक्ति युक्त है, युक्ति युक्त माना ये नहीं चला दिया बात को, कहते युक्ति से चलो, माना झूठ बोल के चलो। ऐसे कई लोग ऐसे युक्ति शब्द यूज करते हैं, युक्ति से चलना झूठ नहीं है, युक्ति युक्त माना यथार्थ चलना। कर्म करो लेकिन यथार्थ हो, युक्ति युक्त हो, एक्यूरेट हो, कर्म को उतारने के लिए नहीं करना। जोग है ना बाबा के साथ, बाबा के बच्चों से गलत कर्म कैसे हो सकता है, नुकसान कैसे हो सकता है, भूलते हो नहीं। बाबा कहते थे अगर किसी को ठोकर लग जाती थी, कहती थी इसकी टोली बंद कर दो, इसका खाना बंद कर दो। इसको ठोकर क्यों लगी? बाबा को भूल गया, रुमाल गुम हो जाता था तो भी बोलता था कि आज ये रुमाल गुम करते हैं, कल तुम अपना शरीर नहीं गुम कर देना। बहुत बाबा शिक्षाएं देता था। ठोकर किसी को थोड़ी सी लग गई, कहता था देखा तुम बाबा को भूला इसलिए लग गई। माना कर्म योगी माना क्या हुआ? बहुत कार्य की कुशलता, कार्य की योग्यता, कार्य एक्यूरेट हो, बाबा की याद है। बाबा की याद ऐसा थोड़ी आंख बंद कर लिया चले गए, अब ट्रेन में बैठ के आ रहे, स्टेशन आ गया, एक व्यक्ति का स्टेशन आ गया, भूल गया, योग में बैठा तो आगे चला गया, दूसरे स्टेशन पर आंख खुली, योग में था, कहता भाई मेरा स्टेशन छूट गया, मैं तो योग में बैठा था। उसका योग है क्या? वो तो अनकॉन्शियस स्टेज हो गई, वो तो वियोग हो गया। बाबा उसको योगी नहीं कहता है। जो योगी आत्मा है उसके हर कर्म एक्यूरेट होंगे। तो कर्म योगी का मतलब क्या हुआ? कि हम सब जो कर्म करें बहुत यथार्थ हो, सबको सुख देने वाला हो, बहुत हल्केपन का अनुभव कराए, और कर्म करते बाबा 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 किया और समर्पित कर दिया। वैसे तो कहता है कोई मेरा बच्चा निष्काम कर्म नहीं करता है, सबको फल मिलता है, लेकिन फिर भी तुम्हें फल की इच्छा नहीं रखनी है। ड्रामा के अनुसार ये नूंद है, पुरुषार्थ की प्रारब्ध मिलनी ही है, लेकिन पुरुषार्थ की प्रारब्ध निश्चित होते हुए भी हमें फल की इच्छा नहीं रखनी है। थोड़ा सा भी कोई कुछ अच्छा काम करता है, मेरा मान हो, मेरा नाम हो, मेरे को लोग पहचाने, करते हैं, नहीं मिलता है तो इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं। अभी एक जगह गया था, इसीलिए मैं गया था, जाना पड़ता कहीं कहीं, बहुत बड़ा भवन बनाया, बहुत सपने सहयोग दिया, कोई एक दो की महिमा हो गई, एक की नहीं हुई, ऐसा मन मुटाव हो जाता है। उनको तो सब जानते, मैंने इतना किया, मेरे कोई नहीं जानता, मेरा कहीं नाम ही नहीं आया। अरे भाई नाम की भूख हो क्या? नाम के लिए काम किया है क्या? भगवान के यज्ञ में जितने जो किया, गुप्त दान, महापुण्य, आपका भाग्य बन गया, नाम हो जाएगा तो हो सकता है खुशी हो, उसी समय वो कच्चा फल खा के खत्म कर दो। नहीं, कोई ने नाम लिया तो और अच्छा है। हम तो ये समझाना चाहते, बताना चाहते, बाबा तो यही सिखाता है। लेकिन थोड़ी थोड़ी बात में फीलिंग का फ्लू आ गया, नाम नहीं हुआ, पूछा नहीं, बुलाया नहीं, मेरी खातिरी, इनकी खातिरी करते, इनका नाम लेते, जैसे इसी ने सब कुछ किया हो। छोटी छोटी बातों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। कर्मयोगी आत्माएं ऐसा थोड़ी करेंगे। कर्म किया फल की इच्छा के बिना, बाबा आपके आप पर समर्पित कर दे। श्रेष्ठ कर्म उसको कहा जाता है जिसके अंदर कर्तापन का भान न रहे। कराने वाले ने करा लिया, कोई भी महिमा करे, कितनी भी करे, स्वीकार नहीं करना। अगर महिमा में फूल गए, खुश हो गए, तो थोड़ी सी कोई कटाक्ष कर देगा, ग्लानी कर देगा, तो मूड खराब हो जाएगा, खुशी गायब हो जाएगी। इसलिए इस बात को बहुत अंडरलाइन करना है कि ठीक है, बाबा ने कराया, उसके बच्चे हैं, उसका कार्य है। मेरे कोई कहता ना, आपने जो क्लास कराया वो मेरे ऊपर ही कराया। हमने कहा मैंने नहीं कराया बहन जी, बाबा को उसके अनुसार कुछ बात कहलानी होगी। मैं तो बाबा की याद में बैठा था, बाबा को कहता हूँ बाबा इन बच्चों को जो देना है दे दो, आपके बच्चे हैं, मैं तो निमित्त मात्र आपका हूं। बिल्कुल निर्माणता के साथ बाबा का आह्वान करो, बाबा को अपना साथी बना लो। तो दूसरा कंबाइंड स्वरूप क्या है? पहला तो शरीर और आत्मा है, दूसरा मैं और मेरा बाबा। सदा कहता है बच्चे मुझे कंबाइंड रख करके चलो, अकेलेपन का अनुभव नहीं करो। अकेले हो जाओगे तो माया आएगी, परेशान करेगी, पछाड़ देगी, इसलिए बाबा मेरा साथी है। बस कहाँ साथ रहता है वो, ये दूसरा तक नहीं है, पहला तक थी अकाल तक। दादी क्या कहती थी मेरे को अपने, बाबा कहता मेरे को अपने दिल में बिठा लो। अब दिल ये नहीं, यहां नहीं बैठता आकर के, हो ये तो शरीर का अंग है। मन की शुद्ध भावनाएं वही दिल है, बहुत प्यार भरा, बहुत शुद्ध भावनाओं वाला संकल्प, जरा भी उसमें अगर खोटापन है किसी भी प्रकार का, बाबा के प्रति कोई संशय है या आत्माओं के प्रति कोई वैर भाव इधर उधर की बातें नेगेटिव बातें हैं, तो वो स्थान अच्छा नहीं है, बाबा कभी भी उसके साथ नहीं रहता, आएगा ही नहीं, बुलाते रहो आप। नहीं तो ऐसे बहुत भोली भाली सच्ची माता है, बाबा के बाबा और बाबा हाजिर हो जाता है। जो बहुत बुद्धि चलाते हैं, बाबा कहते हैं ना, जो दिल वाले हैं वो तो बाबा को साथ अनुभव करते, और जो दिमाग वाले हैं ऐसे याद करते हैं, वो परम धाम में रहता है, ऊपर आंख ले जाएंगे नीचे ले जाएंगे। दिल वाले तो बाबा कहते हैं, बाबा उनके पास आ जाता है। तो बहुत सच्चे दिल से मेरा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा, कैसे प्यार से कल बाबा मुरली में सिखा रहा था बच्चे कैसे रूह ध्यान करो, बाबा आपको मैंने कितना समय से पुकारा, अभी आप मिल गए। कल था ना मुरली के अंदर, कल मैं हैदराबाद में मुरली सुना रहा था सवेरे, सुनाते सुनाते मुझे बड़ा नशा चढ़ा, हमने देखो बाबा कैसे सिखाया एक एक बात बच्चों को, बच्चे बच्चे कह के बस ऐसे बाबा को याद करो, बहुत प्यार से मीठी मीठी बातें करो, रूह रिहान करो, दिल का सौदा है ये, बुद्धि का सौदा नहीं है, दिमाग वाला नहीं है, लेकिन दिमाग को ऐसे नहीं बंद करके रख देना। कई लोग अंधश्रद्धा में फंस जाते, भावनाओं के साथ विवेक का होना जरूरी है, बिना विवेक के परिचय पहचान के बाबा से सब प्राप्तियां नहीं होती, भावना के आधार से वर्षा मिलता है, और जहां भावना में विवेक आ जाता है वहां पद मिलता है। इस बात को थोड़ा अंडरलाइन करना, बाबा ने बात स्पष्ट की है, मैं बाबा की बातें सुनाता हूं, अपनी नहीं सुना रहा हूं। सिर्फ भावना है तो वर्षा मिल जाएगा, वर्षा माना सतयुग में आ जाओगे, लेकिन जो पद है, आठ गद्दियां हैं, आठ का है, 108 का है, 16108 का है, जो राजाई घराना है, राजाई पद है, उस पद का अधिकारी भावना और विवेक के बैलेंस वाले को मिलेगा, क्योंकि वो अंधश्रद्धा से बाबा नहीं कह रहा है, वो पहचान करके कह रहा है, निश्चय से कह रहा है, आह्वान करता है तो अनुभव करता है कि हाँ बाबा है, मेरे साथ है, मेरे सब कार्य कर रहा है, करण करावन हार है। कई बार ऐसे अनुभव होता है, ये कार्य किया ये तो मुझे आता ही नहीं था, कैसे हो गया, बाबा ने करा लिया। ऐसा दिल का प्यारी कर्मयोगी है, इसी को कर्मयोगी कहते हैं, दिल का प्यार बाबा से, बाबा 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 करते चलो और बाबा को साथी बना करके रखो। कहता मुझे ज्यादा जगह तो थोड़ी चाहिए, मैं तो इतनी छोटी बिंदी, जैसे तुम हो वैसे मैं हूं, मुझे बाबा कहो और मैं आ जाऊं एक सेकंड में, फास्ट गति। कहीं कहते ना, यहां पर आया कल मेरे को एक फोन करके कहते, एक दिन मैंने बाबा का ऐसा आह्वान किया, बाबा को यहां बुला लिया, आप लोगों के पास बाबा नहीं आया। हमने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं होता है। बाबा को कोई बुला लेगा तो मेरे पास बाबा नहीं आएगा क्या? एक दिन यहाँ बाबा बैठे थे इधर, अभेद बाबा, तो हम लोग तो यहाँ मुरली लिखते थे, इधर बैठ के मुरली लिखते थे, बाबा यहाँ मुरली चलाते थे। तो नीचे कुछ बहने भोग लगाने के लिए कमरे में आई, यहाँ मधुबन में भोग लगता ना शाम को भी भोग भोजन का, तो वहां भाई लोग कुछ बैठे थे, हंसी करने लगे, अरे बाबा तू वहां बैठा है तुम भोग किसको लगाने जा रहे हो, बाबा तो सामने बैठा है ना, यही खिला दो जा करके। तो वो तो बहन तो गई अपने नियम अनुसार बाबा के फोटो के आगे, वहां कमरे में भोग रखा, योग किया और चली गई। लेकिन ये बात कोई ने बाबा को सुनाई आगे कि बाबा ऐसे ऐसे मधुबन वाले आज ऐसे बोल रहे थे कि बाबा यहां बैठा है, फिर बाबा के कमरे में भोग लगाने की क्या जरूरत है। तो बाबा बड़े प्यार से बोलता, बच्चे भले बाबा यहाँ बैठा है लेकिन आपको ऊपर परमधाम में ही भोग लगाने के लिए जाना है, सूक्ष्म मतन में जाना है, इसलिए वहां लगाए, अच्छा किया, ठीक किया, क्योंकि बाबा तो बहुरूपी है, एक सेकंड में यहां से वहां पहुंच सकता है। बाबा की भावनाएं, अगर आप भावना से बाबा कहोगे, दिल से कहोगे, तो बाबा वहां स्वीकार कर लेगा, भले यहां बैठा हुआ है, उसको आने जाने में कितनी देर लगती है। एक दिन मुरली चल रही थी शांति वन में, अब एक बाबा मुरली चलाते चलाते एक सेकंड ऐसे दृष्टि देते रुक गए, मुरली रुकी तो सब देखने लगे बाबा की दृष्टि ने, ऐसे कहीं चले गए जैसे। फिर आके कहते हैं आज बच्चे है ना एथेंस में कॉन्फ्रेंस चल रही थी विदेश में, जगदीश भाई जी वहां गए थे ग्रीस में, तो वहां कॉन्फ्रेंस चल रही थी, कहता वो बच्चे बहुत याद कर रहे थे इसलिए बाबा वहां चला गया था। बाबा ने बता दिया कि बाबा बच्चे याद कर रहे थे इसलिए बाबा वहां चला गया, फिर आ गया। तो कोई भी बच्चा कहीं भी बैठ करके अगर दिल से याद करेगा तो ऐसे थोड़ी मधुबन में बाबा आया तो आपके पास नहीं आएगा। इसलिए तो भक्तों ने सर्वव्यापी कहा है उसको, सर्वव्यापी इसलिए कहा है कि उसकी स्पीड इतनी तेज है कि जिसने यहां जहां याद किया वहां पहुंच गया, हाजिर हो गया, अनुभव करा दिया। इसलिए लोगों ने कहा जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है तू, तो कहता मेरे गाली देते हो। अभी यही कहता ना बाबा, बाबा बच्चे कहते बाबा हम गाली नहीं देते, हम तो बहुत भावना से कहते हैं आप सब जगह हो। तो बाबा को ऐसे साथी बना के कंबाइंड रह करके सब बच्चे साथ रख सकते हैं। उन्होंने तो गोपियों के साथ श्री कृष्ण को दिखाया है, महाराष्ट्र के अंदर क्या दिखाया है, हर गोपी के साथ श्री कृष्ण हो सकता है क्या? ऐसे श्री कृष्ण स्थूल में हर गोपी के साथ डांस कर सकता है क्या? भाई एक को हाथ छोड़ के दूसरे के हाथ में जाएगा ना, लेकिन उसमें सबके साथ दिखाया हुआ है, इतना बहुरूपी था वो। ये यादगार है, श्री कृष्ण का नहीं है, शिव बाबा का है। शिव बाबा सब गोपियों के साथ रह सकता है, इतना फास्ट है, इतनी उसकी स्पीड है, निराकार है, ज्योति है, किसी को भी अनुभव करा देता है मैं साथ हूं। तो बाप दादा मुझ आत्मा के साथ कंबाइंड है। एक मुरली चली है कि मास्टर त्रिमूर्ति बन करके रहो, जैसे तीन तख्त बताए ना, अकाल तख्त, दिल तख्त, भविष्य तख्त, ऐसे ही बाबा ने कहा बच्चे तुम त्रिमूर्ति हो करके योग करो। मास्टर त्रिमूर्ति बन करके भ्रकुटी में बैठ गए, एक तरफ बाप एक तरफ दादा, दो शक्तियां। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि ब्रह्मा बाबा को बहुत नशा है कि मेरे साथ दो बत्तियां हैं, एक मेरी बत्ती एक शिव बाबा की बत्ती। तो मैंने क्लास कराया बाबा को नशा है दो बत्तियां हैं, मेरे को नशा है कि मेरे साथ तीन बत्तियां हैं, एक मेरी बत्ती, एक बाबा की बत्ती, एक दादा की बत्ती, है ना त्रिमूर्ति। तो जब योग अभ्यास करो इसी नशे में बैठो, बाबा आप मैं आत्मा चमक रहे उस लाइट भ्रकुटी में, आप आओ, बाप और दादा दोनों महान शक्तियां हैं, अभी एक आदि देव ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर और एक सर्व आत्माओं का पिता सर्वशक्तिमान गॉडफादर। बाबा को ऐसे प्यार से याद करो, दोनों आ जाएंगे आपके भ्रकुटी आसन पर, और फिर इतना नशे से ऐसे बैठ जाओ, संग का रंग लग जाएगा। यही सत्संग है, कल के परसों के वरदान में था, यही सत्संग है। जिसके संग में आत्मा रहती है उसके संग का रंग लगता है। अगर वो पतित पावन है, सदा सर्व शक्तियों से संपन्न, सर्व समर्थ है, तो मैं कमजोर रह सकता हूं क्या अगर मेरे साथ रहता है? तो हम बाबा को ऐसा साथी बना करके कर्म करें, ये कर्म योगी स्थिति है, और कर्म बंधन से मुक्त है तो कर्मातीत स्थिति है। इस शरीर में रहते हुए कर्म करते हुए कर्म बंधन से मुक्त होने का अच्छा अभ्यास करो। कोई भी कर्म आत्मा को अपनी ओर आकर्षित न करे, चाहे वो श्रेष्ठ कर्म, व्यर्थ कर्म तो अभी करना ही नहीं ब्राह्मणों को। बाबा ने हर बच्चे को कहा बच्चे व्यर्थ से मुक्त रहो, कभी भी देह विमान में आकर के कोई भी कर्म किया तो विकर्म बन जाएगा, व्यर्थ कर्म कहलाएगा। इसलिए आत्म अभिमानी स्टेज में बैठ करके हीटर चला गया, बड़ी गर्मी जैसे लग, गर्म नहीं लग रहा है? थोड़ा सा खोलो, खोल दो थोड़ा, क्या मेरे को लगता है हीटर जला है। आप लोगों को ठंडी लगती? नहीं ठंडी तो नहीं अभी ना, योग अग्नि। तो कर्मातीत स्थिति की कई निशानियां कर्म योगी आत्माओं के जीवन से दिखाई देती हैं। जब वो संपूर्ण बन जाएगी, तीसरा जो कंबाइंड स्वरूप है ना, ब्राह्मण सो फरिश्ता, ब्राह्मण सो फरिश्ता, मैं ब्राह्मण हूं और सदा याद रहता है कि कर्म किया, कर्म से अलग हुए, फरिश्ता हूं। और चौथा स्वरूप है, चौथा स्वरूप कौन सा कंबाइंड है? चतुर्भुज। नर और नारी दोनों के संस्कार हर एक के अंदर है, इसलिए कभी नहीं कहना कि मैं तो फीमेल हूं, ये काम तो भाइयों का है, मैं कैसे कर सकती हूं। भाई सोचे ये काम तो बहनों का है। एक बार मेरे पास एक भाई आया, हमने कहा माता जी को थोड़ा तो सेवा के लिए भेज दिया करो, तो माता जी कहती है अगर मेरे को सेवा में भेज देगा तो इनको खाना कौन बना खिलाएगा। तो हमने कहा खाना बनाना नहीं आता है क्या? तो देखने लगा मेरी तरफ, मैंने कभी अपने हाथ से नहीं बनाया है। क्या भाई परवश क्यों हो, कुछ भी इनको हो गया तो कल कौन खिलाएगा आपको, इसलिए जाओ सब सीखो यहाँ पर। कहता खिचड़ी बना के तो खा सकता हूँ। तो ऐसे ऐसे भाई हैं, कोई बिल्कुल अधीन हो जाते हैं दूसरे के ऊपर। बहनें भी कभी कभी सोचती हैं ये काम तो भाई के बिना नहीं होगा। शुरू से यज्ञ की स्थापना में बाबा ने ये पाठ बहनों को बहुत पक्का कराया, पक्का करो मैं चतुर्भुज हूं, मैं चतुर्भुज हूं, दोनों भुजाएं, दो भुजाएं मेल की हैं, दो भुजाएं फीमेल की हैं, इसलिए कोई भी कार्य में उनको रुकावट नहीं आई। बड़े से बड़े काम, चाहे वो गाड़ी खराब हो गई, कुछ भी काम है, बिजली का काम है, मोटर बनाने काम है, जूता चप्पल बनाने काम है, सब काम बहनों ने किए। बड़े बड़े बर्तन मांजने का काम परदादी सुनाती थी, डेगरे में एक बार मैं चली गई अंदर, उसको कैसे साफ करूं अंदर, मैं छोटी थी, मैं कूद गई उसके अंदर और पैर से ऐसे ऐसे रगड़ा। मेरी दादियों ने चतुर्भुज बन के सब काम किए हैं, तो चप्पल भी बनाती थी। अब इतनी बड़ी दादी बाबा की जो सुपुत्री, आप समझो जो जवाहरात से खेलने वाली, हीरे जवाहरात से बाबा ने इनको कितना श्रृंगार करके रखा हुआ था, अब समर्पित होने के बाद ये सब करना पड़ा। कभी अहंकार नहीं आया, सब काम करना सिखाया। हम लोगों को भी दादियों ने शायद इसीलिए सब काम सिखाया, कोई काम नहीं छोड़ा, चाहे जो कार्य हो सब करना आता है, डिपेंड नहीं किसी पर। लेकिन चतुर्भुज बन करके रहो, सब संस्कार हैं आत्मा के अंदर, तो ये चारों कंबाइंड स्वरूप सदा याद रहेंगे, तो कर्म करते हुए कर्मयोगी स्थिति बहुत सहज रह सकती है। क्योंकि किसी पर आधारित हो जाना, किसी के बंधन में बंध जाना, किसी के बिना कार्य रुक जाना, बाबा कहता है ये भी एक बंधन है। फलाना भाई होगा ना तो ये काम कर लेगा। कई बार मैं फोन करता हूँ ना, बहन जी आज बहुत जरूरी डायरेक्शन भेजा है, आपने देखा? तीन दिन हो गए, दो दिन हो गए, भाई जी वो भाई आएगा ना तब मेल खोल के देखेगा। क्यों इतना परवश हो, इतना भी नहीं सीख सकते हो आप? कम से कम अपना मेल खोलना तो सीख लो, ईमेल क्या है बड़ी बात, मुझे भी तो कोई थोड़ी पढ़ के आए इंग्लिश बिंग्लिश। बाबा ने सिखा दिया, सब अपना काम तो कर लेते हैं, किसी पर डिपेंड थोड़ी है। लेकिन ऐसे डिपेंड हो गए हैं जैसे बस वो आएगा तभी होगा, वो बहन आएगी या वो भाई आएगा तभी ये काम होगा। बाबा कहता चतुर्भुज बनो, सब कार्य सीख लाओ, सब कार्य करो, करते करते सीख जाते हैं ना, कोई सीख के ऊपर से थोड़ी आते हैं, एक बार करोगे दो बार करोगे। लेकिन कोई कोई कहता ये काम मेरे से होगा ही नहीं, लेकिन सब कार्य किए जा सकते हैं, कोई कार्य असंभव नहीं। जब एक व्यक्ति कर रहा है, कर सकता है, तो क्या मैं नहीं सीख सकता हूँ? लेकिन उस सीखने की अंदर की लगन चाहिए, भावना चाहिए, और थोड़ा करेगा तो करते एक दो बार नुकसान करेगा, करते करते सीख जाएगा। करते तो हर एक से कुछ न कुछ तो नुकसान होता ही है, लेकिन नुकसान हो गया और आप निराश हो जाओ, छोड़ दो, नहीं करेंगे। कई बार पता कैसे होता है, एक बार हमारे पास यहाँ पर कंप्यूटर आया, बहुत महंगा कंप्यूटर था, पहले पहले तो 1 लाख के ऊपर आता था, वो भी ST वाला आता था, आज जैसा नहीं, इतने रेम वाला। तो हमारे करुणा भाई ने ला करके मेरे ऑफिस में रख दिया। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, मैं कंप्यूटर नहीं सीखूंगा। कहता है जब समय मिले ना तो इसे खेलना। डाल दिया, मैं सीख रहा था तो रुक गया, एक दिन खराब हो गया। तो एक भाई आया था मेरे पास, हमने कहा कि तुम इसको ठीक कर सकते हो? कहता हाँ मैं डिप्लोमा पढ़ा हूँ, मैं जानता हूँ, मैं कर लूंगा। उसको देना बनाने के लिए दिया और दे करके उसने क्या किया पता नहीं, वो पूरा कंप्यूटर जल गया। चल गया, वो डर गया बेचारा, अभी तो पता नहीं डांट लगेगी क्या होगा। एक दिन दो दिन सामने नहीं आया, फिर मैंने बोला ठीक हुआ कि नहीं हुआ? क्या बोले बताना तो पड़ेगा। बोला भाई जी एक गलती हो गई मेरे से, उसको अर्थिंग की जरूरत थी और मैंने अर्थिंग लगाना भूल गया, डायरेक्ट प्लग में लगा दिया, वो सारा जो भी था वो सब जल गया, खत्म हो गया। तो मैंने कहा फिर अभी क्या करना है? कहता ये काम तो नहीं आएगा, अभी दूसरा लेना पड़ेगा। चुपचाप देखता हमने, अच्छा ये बताओ तुम सीख गए? कहता सीख तो ऐसा गया हूं जो कभी भी अभी गलती नहीं होगी। तब से लेकर के यज्ञ के जितने कंप्यूटर है ना सब वही ठीक कर रहा है, और अगर मैंने उस समय गुस्से में आके बोल दिया होता तुम आगे के लिए हाथ नहीं लगाएगा अभी, बोल देते ना कई लोग ऐसे, अब आगे के लिए तुम ध्यान रखना, बिल्कुल टच नहीं करना किसी चीज को, तो उसके सीखने की उसको आगे बढ़ने की भावना खत्म हो जाती है, पंख टूट जाते हैं उसके। इसलिए बाबा कहता चलो एक दो बार कोई से ऐसी बातें हो भी जाती है अनजान में भूल से, तो ऐसे गुस्से में आकर के उसको श्रापित नहीं कर दो या उसको छुड़ाओ नहीं, ठीक है सीख गए आगे के लिए बढ़ो। उससे क्या है कार्य बहुत अच्छे अच्छे होने लगते हैं, सीखने के बाद तो बहुत कुछ कर लेता है। तो हम सबको ये बहुत ध्यान देना है कर्म को बहुत कुशलता से चलाने के लिए, सफल कर्म हो। हमारा बाबा का यज्ञ है नई दुनिया की स्थापना का कार्य, कितना बड़ा विशाल कार्य भगवान को कराना है और अपने अनजान बच्चों से कराना है। जो बहुत जानकार हैं पढ़े लिखे हैं उनको यूज नहीं कर रहा है बाबा, बहुत बड़ी बात है ये भी आप देखना, क्यों नहीं यूज करता है, उसके पीछे भी राज है। कौन सा राज है? क्योंकि अगर उनको यूज करेगा तो उनकी अपनी बुद्धि उसमें मिक्स हो जाएगी, समझ रहे हैं मेरी बात है? मान लो आज जिस डिपार्टमेंट को मैंने देखा है संभाल रहा हूं, मेरे को इसके विषय में ज्यादा कोई पढ़ाई लिखाई इधर उधर का ज्ञान नहीं है जो मैं उसमें कोई चीज मिक्स करूं। अगर कोई हमारे से ज्यादा पढ़ा लिखा अच्छी तरह से पोस्ट वाला बुद्धि वाला आएगा तो कहेगा ये बाबा ने जो बोला ना इसकी जगह पर ये डाल दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, सेंटेंस ही चेंज कर देगा, क्योंकि तो उसकी अपनी बुद्धि वहां यूज हो रही है। और हम लोगों के पास बाबा ने कहा बुद्धि नहीं रखो तुम अपनी, मैं बुद्धि यूज कराऊंगा तुम्हारी। तो बाबा अपने बच्चों को ऐसे यूज करता है कि जिसमें कोई भी अपनी बुद्धि अपनी मनमत ऐड न कर दे। तो बाबा के जो कार्य चल रहे हैं ना, मैं देख रहा हूं करण करावन हार बाबा किसी भी बच्चे से, इसलिए कभी ये नहीं सोचो ये जो बहने हैं ना ये तो छोटी हैं, ये तो पढ़ी लिखी नहीं है, इनके आगे इतना बड़ा वीआईपी आएगा क्या समझाएंगी, क्यों ऐसा संकल्प करते हो क्या समझाएंगी? अरे बाबा उनके द्वारा कुछ भी समझा सकता है, बड़े बड़े बच्चों को समझाया है ना। आज हमारी दीदी जी कितनी पढ़ाई की थी मालूम है? कितनी पढ़ी थी दीदी? जीरो, स्कूल ही नहीं गई और मुख्य प्रशासिका बनी मम्मा के सेकंड में। दादी तो बाबा के अव्यक्त होने के बाद आई, मम्मा के अव्यक्त होने के बाद दीदी मनमोहिनी जी ने यज्ञ को संभाला के मुख्य प्रशासिका की सीट पर आई, मम्मा की चारपाई पर रही, वही कमरा जो है ना वहीं पर। और इतनी तीक्ष्ण बुद्धि, पढ़ाई एक क्लास नहीं की है, साइन भी हिंदी में नहीं किया होगा, हिंदी में सीख गई थी लेकिन इंग्लिश या हिंदी में साइन नहीं किया। क्वेश्चन कितने अच्छे अच्छे मुरली के बनाती थी, उन्होंने मुझे क्वेश्चन बनाने के सिखाया, मुरली के क्वेश्चन बनाना, सबको फेल करना, सबको फेल करना, पूरे क्लास को कहती आज फेल करूंगी देखें कौन उत्तर देता, उसी दिन की मुरली से सबको फेल करते थे। और इतनी तीक्ष्ण बुद्धि, एक सेकंड में कोई सामने आ जाए ऐसे परख लेती थी, पूरा इतिहास जान जाती थी, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये आगे कैसे चल सकता है। बाबा ने उनको बुद्धि को बहुत दूरादेशी बना के दिया, विशाल बना के दिया, क्योंकि उनको अपनी बुद्धि का अभिमान ही नहीं था। बाबा कराने वाला है, बाबा के बच्चे हैं, बाबा का कार्य है, हर पल बाबा बाबा बाबा। जब स्थापना में जब बाबा अव्यक्त हो गए ना, बाबा ने कहा कि बच्चे बाप कहीं गया नहीं है, बाबा ने सिर्फ कमरा चेंज किया है, कमरा चेंज किया, ये बाबा के शब्द थे, कमरा चेंज किया है, जब चाहिए दीदी दादी गुलजार दादी खोलेंगे, अभी बाबा को बुला के ले आओ। मैं समझता हूँ जितने स्थान है ना, चाहे दीदी का कमरा है, चाहे छोटा हाल है, चाहे बाबा कमरा है, हर जगह पर बाबा गुलजार दादी को बिठाया, अभी अभी जाओ बाबा को बुला के ले आओ, ये काम है, ये पूछना है। मुरली नहीं चलाई उस समय, सब गई और बाबा है या ट्रांस में गई, मैसेज आया, उसके बाद कार्य किया। ऐसे बाबा को यूज किया है, एक बार गाड़ी आई, एक कार, पहली पहली कोई ने कार गिफ्ट दिया यज्ञ को, क्यों बारी बिगड़ी पार्ट में तो सब खत्म हो गया था ना। तो जब पहली कार आई हम लोगों के सामने, बाबा के सामने नहीं आई, अव्यक्त होने के बाद आई। तो दादी तो पहले टैक्सी में ही चलती थी, बाहर की टैक्सी में ही जाते थे। तो फीएट गाड़ी आई थी, फीएट उस समय चली थी नई नई। तो गाड़ी लेकर के एक ड्राइवर, गुलजार दादी, दीदी और दादी, चार जने बैठ करके चलो इसका उद्घाटन करेंगे, और बैठ करके गए अनादरा पॉइंट पर, खड़ा कर दिया। अनादरा पॉइंट पर खड़ा करके कहती है गुलजार दादी को, गुल इस गाड़ी में जब तक बाबा नहीं बैठेगा ना तब तक दादी नहीं बैठेगी, तुम जाओ बाबा को ले आओ, बुला लो। गाड़ी खड़ी है वहीं अनादरा पॉइंट पर, गुलजार दादी बैठे बैठे कार में बाबा को ले आई, ट्रांस में गई और बाबा आ गए। गुलजार दादी को बाबा को ऐसे दादी ने उतारा, सारा गाड़ी दिखाई, बाबा ये गाड़ी मिली है, आप इस पर नारियल तोड़ो। अरे बच्ची ये गाड़ी क्या, गाड़ियों की तो लाइन लगने वाली है। वो वरदान दे दिया, इतना यूज किया दादी ने बाबा को, हर पल हर समय। म्यूजियम बना बाबा के अव्यक्त होने के बाद, चौथे मास में इसका उद्घाटन हुआ, बना बाबा की प्रेरणा से। जमीन लिया, जिस दिन रजिस्ट्री हुई उस दिन बाबा शरीर छोड़ गया। म्यूजियम बना लिया चार महीने में, और चौथे महीने अप्रैल में जब उसका उद्घाटन था, बाबा ही उद्घाटन करेगा हम नहीं करेंगे, म्यूजियम में बाबा को बुला लिया। बाबा ने एक एक चित्र देखा, एक एक बात करेक्शन की, पूरे हाल में घूम करके उधर से दादी के तन में बैठ करके। तो सब जगह पर बाबा को ऐसे यूज करके आज यज्ञ को कहां से कहां पहुंचाया है। हम सभी भी बाबा को अभी यूज करें, यूज नहीं कर रहे हैं, यूज करो। और वो तो कहीं भी सच्चे दिल वालों पर राजी है, कहता सच्चे दिल पर साहेब राजी है, राजी करके रहो, सच्चाई से बाबा मन सुनता है, सच्चे बच्चे बाबा को यूज कर सकते हैं। तो जब भी ऐसी कोई बात हो ना, बाबा कहो और बाबा आपके सामने आ जाए, हाजिर हो जाए। तो ऐसे कर्म योगी बन करके अगर रहेंगे, साथ साथ रहेंगे, कंबाइंड होकर के कर्म करेंगे, तो कर्म बांधेगा नहीं, कर्म किया और न्यारे हो गए, हल्के हो गए, वो कर्मातीत स्टेज आ जाएगी। जिसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है, नाम मान शान की इच्छा नहीं है, कोई अपनी कामनाएं नहीं है, करण करावन हार बाबा करा रहा है, हम लोग तो खेल कर रहे हैं, निमित्त है। तो सभी निमित्त भाव से जो कुछ बाबा करा रहा है, क्वेश्चन नहीं करना ऐसा होगा, ऐसा करें या न करें। कई लोग दुविधा में रहते हैं, और दुविधाएं खत्म करने का एक अच्छा साधन जो यूज करना चाहिए, लाइन क्लीन क्लियर है तो बाबा की टचिंग आएगी। एक बहुत अच्छा प्रयोग कई लोग कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है। मान लो कभी दुविधा आ गई, बाबा के आगे बैठते हैं, योग करते हैं, कभी क्वेश्चन उठता है, पता नहीं मेरे मन का संकल्प है या बाबा की टचिंग है। अगर बाबा की टचिंग है, राइट टचिंग है, तो दुविधा के संकल्प अंदर नहीं उठेंगे। लेकिन उठ रहे हैं मान लो, तो मैं कहता हूं सत्य वचन महाराज, भगवान के महावाक्य, जिस तारीख की आपके पास मुरली है हाथ में, बहुत भावना से जो संकल्प आपका अंदर है, जो बाबा की टचिंग आप कह रहे हो, मुरली को खोलो, मुरली को पढ़ो, उसमें उसका कहीं ना कहीं उत्तर होगा। ये कईयों को महसूस हुआ है, बाबा की अंदर की जो टचिंग्स हैं उसी दिन की मुरली में आती हैं। कैसे आती है मैं नहीं जानता, वो जादूगर है, जादू उसका है, और उसके जादू की क्या कहेंगे। मैं समझता हूं बहुतों को यह अनुभव होता कि मेरे को आज सवेरे ये बाबा की टचिंग आई, ये बात आई मेरे अंदर, मेरी क्लास में ये बात निकली, दीदी ने बात कह दी, फोन पर ये बात सुन ली, या मुरली के अंदर वो बात आ गई, मेल खाएगा। और अगर मेल खा रहा है तो समझो ये राइट टचिंग थी। इसलिए बाबा की मुरलियों को इतना आधार बना के रखो। सबने देखा होगा हमारी दादियों ने कोई दूसरी स्टडी नहीं की, कोई दूसरी चीज नहीं पढ़ी, लेकिन मुरली उनके हाथ में सदा रही, और मुरली को पढ़ पढ़ करके इतना महान बन गई, ज्ञानी तो आत्मा बन गई, कर्मातीत स्टेज को प्राप्त कर लिया। तो मुरली एक अच्छा चिंतन मनाती है, मुरली हर प्रश्न का उत्तर देती है। जब भी कोई ऐसी बातें आती हैं मुरली से चेक कर लो और उसको सदा साथ रखो। तो कर्म भी श्रेष्ठ होंगे, सफलता भी मिलेगी, कर्म बंधन नहीं बनेंगे और अनुभव होगा कर्मातीत स्टेज बनती जा रही है, संपूर्णता को प्राप्त होते जा। जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, संस्कार हैं, वो योग बल से धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। समाप्त हो रहे हैं, उसकी निशानियां क्या होंगी? हल्के होते जाएंगे, सहज योगी जीवन बन जाएगी, बोझ नहीं लगेगा, भारीपन नहीं लगेगा, उलझन नहीं पैदा होगी, हल्का रहेंगे। इसलिए कई लोग पूछते हैं, अगर विकर्म विनाश हुए तो उसकी क्या निशानी है, विकर्म बन रहे हैं उसकी क्या निशानी है, हम ही चेक कर सकते हैं। अगर खत्म हुए हैं, हल्के हुए हैं, तो जो संस्कार बार बार इमर्ज हो जाते हैं स्वप्न में, संकल्पों में, बोल में, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, वो फिर नहीं उत्पन्न होते। उत्तेजनाएं जो इंद्रियों के, वो भी शांत हो जाती हैं, शीतल हो जाती हैं, वैर भावनाएं खत्म हो जाती हैं, सब अच्छे लगने लगते हैं। जो परसों के मूल्य में ना दो बातें थी, निस्वार्थ और निर्दोष। एकदम आत्मा निस्वार्थ भाव से सेवा करती है, कोई स्वार्थ भावना नहीं रहती और कोई भी किसी के दोष दिखाई नहीं देते, किसी की कमी कमजोरियों पर ध्यान नहीं जाता। अगर संस्कार चेंज हुए हैं, विकर्म विनाश हुए हैं, तो ये निशानियां उसके प्रैक्टिकल जीवन में दिखाई देती हैं। आत्मा बहुत अंदर से प्रसन्नचित, सब प्राप्तियों से भरपूर, सदा संतुष्टता का अनुभव करती है। अगर ये निशानियां आपको दिखाई दे रही हैं, माना आपने योग जो किया उसे विकर्म विनाश हुए हैं, और अगर नहीं हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक तरफ विनाश कर रहे हैं और दूसरी तरफ बना रहे हैं। कई ऐसे कर्म हैं जो बंधन बना देते हैं। किसी को हम कोई चीज ऐसी दे देते हैं, किसी पर आधारित हो जाते हैं, किसी की बातों को वायुमंडल में फैला देते हैं कि यह उसने है और हमने इधर उधर वर्णन कर दिया, तो वो भी एक बंधन बन जाता, वो भी एक बहुत बड़ा विकर्म है। कहते हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने नहीं किया, लेकिन अगर किसी ने किया और उसकी बात को मैंने ग्रहण करके, स्वीकार करके दूसरों तक पहुंचा दिया, तो उस विकर्म में हम भी हिस्सेदार बन गए, उस विकर्म का भी बोझ हमारे ऊपर चढ़ गया। और अगर वो बोझ चढ़ भी रहा है तो कई बार ऐसे हिसाब किताब आ जाते हैं जो आत्मा कहती है मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरे पर क्यों आया, किया तो उसने था, भोगना मेरे को आ रही है। कारण यही है कि उसने किया लेकिन हमने उस बात को इधर उधर वायुमंडल में फैला दिया, उसका बोझ चढ़ गया। तो वर्तमान समय संगम युग पर हमें अपने बोझ उतारने हैं, घर जाने का समय है, बंधनों को काटना है, कर्मातीत बनना है, तो बहुत अटेंशन देने की जरूरत है। चढ़ाई ऊंची है, फिसलन वाला रास्ता है, संभल संभल के चलना है, नहीं तो ऊपर से गिरे तो कहते हैं चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकना चोर। इतना टेंशन रखना पड़ेगा, नहीं तो कहीं भी पांव फिसल सकता है, क्योंकि चारों तरफ माया चांस लेने के लिए घूम रही है, कब अलबेला बने और कब मैं इसको पकड़ू। तो इसलिए बहुत अलर्ट होकर के बहुत सावधानी से चलते चलो, मंजिल हमारे साथ है, सामने है, पहुंचना तो है ही। और बाबा कहता तुम नहीं चलोगे तो और कौन आएगा, आपको ही कर्मातीत संपन्न बनना है। बाबा बनाने वाला बना रहा है, हम सब विकर्मों से मुक्त होकर के रहे। तो चलो अभी हम कुछ समय के लिए योग करें, 12 बजने वाला है, डेढ़ घंटा हो गया क्या, ये डेढ़ घंटा बोलता रहा मैं, 5-7 मिनट के लिए तो अशरीरी बन जाओ। सभी अपने मस्तक के बीच चमकते हुए सितारे को देखो, लाइट और माइट से संपन्न मैं एक दिव्य सितारा इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान, मेरे चारों ओर एक बहुत सुंदर आभा मंडल है, उस प्रकाश के गोले में मैं एक छोटी सी चमकती बिंदु इस साकार वतन से पास अपने लाइट के वतन में बाप दादा के सन्मुख विराजमान हूं। बाबा का वरदानी हाथ, उनकी शक्तिशाली स्नेह की किरणें दृष्टि द्वारा मुझ आत्मा को प्राप्त हो रही है। बाबा मुझ आत्मा को समान भाव का वरदान दे रहे हैं।
युग में अब तुम्हें